रुपए का रिकॉर्ड निचला स्तर यूएसडी आईएनआर क्यों गिर रहा है, कहां रुकता है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। रुपया मई में रिकॉर्ड निचले स्तर 97 पर पहुंचा, फिर तेल के ठंडा पड़ने पर लगभग 95 तक लौटा। यूएसडी आईएनआर असल में क्यों कमजोर हो रहा है, पूर्वानुमान कहां रुकने की बात करते हैं और चिंगारी एक तेल झटका और एक युद्ध। तात्कालिक कारण ढूंढना कठिन नहीं है। पश्चिम एशिया में युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मज में व्यवधान, वह रास्ता जिससे दुनिया का लगभग पांचवा हिस्सा तेल गुजरता है, ने इस साल पहले ब्रेंट क्रूड को $120 प्रति बैरल की ओर उछाल दिया, इससे पहले कि वह मध्य 80 के दायरे में लौटे। भारत के लिए, जो अपनी खपत का लगभग 85% तेल आयात करता है, यह लगभग सबसे बुरे संभव झटके के करीब है। कच्चे तेल में हर $10 की वृद्धि वार्षिक आयात बिल में लगभग 13-14 बिलियन और मुद्रास्फीति में 30-60 बेसिस पॉइंट जोड़ती है, और वे सारे अतिरिक्त डॉलर रुपयों से खरीदने पड़ते हैं। इसके ऊपर विदेशी निवेशकों ने साल के पहले 5 महीनों में लगभग $26 बिलियन भारतीय इक्विटी से बाहर निकाले, जो रिकॉर्ड पर सबसे तेज ऐसा बहिर्वाह था, आय को वापस भेजते और रास्ते में रुपए बेचते हुए। उसमें एक मजबूत यूएस डॉलर जोड़े, जिसे संघर्ष के दौरान सेफेवन मांग ने ऊपर उठाया, और मई के रिकॉर्ड निचले स्तर का नुस्खा तैयार है। अहम बात यह है कि इसमें से लगभग सब कुछ चक्रीय है। जैसे जैसे तेल नरम पड़ा है और युद्ध एक असहज संघर्ष विराम की ओर बढ़ा है, वही ताकतें उलट गई हैं, और ठीक यही वजह है कि रुपया उबरा। अगर यही पूरी कहानी होती तो यह एक गुजर जाने वाला झोंका भर होता। अंतरधारा रुपया हमेशा क्यों फिसल रहा था? पर यही पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि तेल के उछाल के नीचे कहीं अधिक धीमी धारा बहती है। एक कदम पीछे हटें तो रुपए की राह एक ही दिशा में लगभग सीधी रेखा है, 2022 में डॉलर के मुकाबले लगभग 74, 2024 में 83, पिछले दिसंबर 90 के पार और इस साल मध्य 90 के दायरे में। उस लगातार बहाव की संरचनात्मक जड़ें हैं जिनका किसी एक युद्ध से कोई लेना देना नहीं। भारत एक चिरकालिक व्यापार घाटा चलाता है, यह दुनिया से जितना बेचता है उससे कहीं अधिक खरीदता है, जिसे आयातित सोने की राष्ट्रीय भूख और उन वस्तुनिर्यातों ने और भारी बना दिया है जो गति बनाए रखने में संघर्ष करते रहे हैं। इसका चालू खाता घाटा, जो पिछले साल जीडीपी के 1% से आराम से नीचे था, अब 2026-27 में 2% की ओर चौड़ा होने की राह पर है। और जो ब्याज दर का तकिया कभी रुपए को सहारा देता था, वह पतला हो गया है। आरबीआई ने 2025 में दरें 125 बीपीएस घटाई, जबकि यूएस फेडरल रिजर्व उसी तेलचालित मुद्रास्फीति से सतर्क यथास्थिति पर रहा, जिससे वह अंतर सिकुड़ गया जो निवेशकों को रुपए रखने का प्रतिफल देता था। ऐसी बुनियादी बातों वाली मुद्रा अमूमन हर साल डॉलर के मुकाबले कुछ प्रतिशत खोती है, लगभग एक नियमित बात के रूप में। युद्ध ने रुपए की कमजोरी नहीं रची, इसने एक ऐसी गिरावट को तेज किया जो पहले से ही अंतर्निहित थी। आरबीआई का नया खेल गिरावट को रोकना नहीं, संभालना। भारत का केंद्रीय बैंक कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, यह आपको काफी कुछ बताता है कि यह किस दिशा में जा रहा है। आरबीआई ने रुपए का बचाव करने में भारी खर्च किया है। इसका विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी के शिखर से लगभग $47 बिलियन गिरकर करीब $681 बिलियन पर आ गया है। इसने पिछले वित्त वर्ष में स्पॉट बाजार में रिकॉर्ड $53 बिलियन शुद्ध बेचे, और इसने $110 बिलियन से अधिक का रिकॉर्ड फॉरवर्ड बुक बनाया है, जो डॉलर इसने बाद में देने का वादा किया है। उसके साथ इसने एक समर्थन पैकेज भी पेश किया है, एक $5 बिलियन का करेंसी स्वैप विदेशी मुद्रा जमा आकर्षित करने के लिए सब्सिडी वाली हेजिंग, विदेश में उधार लेने वाली सरकारी कंपनियों के लिए सस्ते स्वैप और सबसे महत्वपूर्ण एक सरकारी अध्यादेश जिसने वह कर समाप्त कर दिया जो विदेशी निवेशक भारतीय सरकारी बॉन्ड पर चुकाते थे ताकि कर्ज प्रवाह आकर्षित हो। पर सबसे ज्यादा खुलासा करने वाला बदलाव दार्शनिक है। गवर्नर संजय मल्होत्रा के तहत आरबीआई ने संकेत दिया है कि वह रुपए में मार्केट ड्रिवन चालों का प्रतिरोध नहीं करेगा और केवल अत्यधिक उतार चढ़ाव को सहलाएगा, जो पिछले शासन की कसी हुई पकड़ से एक सोचा समझा विराम है। साफ शब्दों में आरबीआई ने रुपए की गिरावट को सुव्यवस्थित ढंग से संभालने का विकल्प चुना है बजाय इसे रोकने की कोशिश में खुद को सुखा देने के। यह एक समझदार विकल्प है और यह एक संकेत भी है, किसी लकीर की उम्मीद न करें। फिर भी भंडार अब भी लगभग 11 महीने के आयात को कवर करते हुए इसके पास गिरावट को सुव्यवस्थित बनाए रखने की पर्याप्त गुंजाइश है। तो यह कहां रुकता है? यही वह सवाल है जिसका जवाब हर कोई चाहता है और ईमानदार उत्तर यह है कि यह ज्यादातर तेल पर दाव है। उस बेस केस में जो अधिकतर पूर्वानुमानकर्ता अब रखते हैं, युद्ध के कम होने पर कच्चा तेल 85-90 के दायरे में टिकता है तो रुपए के स्थिर होने और थोड़ा मजबूत होने तक की उम्मीद है, जहां माफ्ग, कोटक, आईसीआईसीआई और केयरेज जैसी संस्थाएं अपने 2026 के अंत के पूर्वानुमानों को 92 से 95 के दायरे में रखती हैं। उस नजरिए से मई की 97 तक की छलांग एक अस्थायी ओवरशूट थी, न कि कोई नया सामान्य। बेरिश परिदृश्य भी उतना ही स्पष्ट है। अगर तेल फिर 110-120 की ओर उछले तो वही विश्लेषक रुपए को 97 से 98 और उससे आगे फिसलते देखते हैं, जहां 100 तक की टिकाऊ चाल को बेस केस के बजाय एक सच्चा तेल रिस्क माना जाता है। ऐसा कुछ जिसके लिए एक तेल झटके और डॉलर में व्यापक उछाल दोनों का एक साथ होना जरूरी है। कुछ कॉन्ट्रेरियन भारत के ऊंचे यील्ड और एक संभावित व्यापार समझौते की ओर इशारा करते हुए तो रुपए को निचले 90 के दायरे की ओर उबरते भी देखते हैं। सब जोड़े तो एक ठीक ठाक सार यह है, किसी और ऊर्जा झटके को छोड़ दें तो रुपया निकट अवधि में सबसे संभावित रूप से मध्य 90 के दायरे में बहता है, जिसकी लंबी अवधि की दिशा अब भी धीरे धीरे नीचे की ओर है। एक सुव्यवस्थित फिसलन कोई कगार नहीं। जो कोई एक सटीक आंकड़े का वादा करता है वह कच्चे तेल की कीमत का अनुमान लगा रहा है। संक्षेप में रुपया कहां टिकता है, यह तीन तेल चालित परिदृश्यों पर आता है, जहां आरबीआई मंजिल नहीं बल्कि चाल की गति तय करता है। बेस केस तेल 85-90 के पास रुपया स्थिर होकर थोड़ा मजबूत होता है, जहां अधिकतर संस्थाएं माफ्ग, कोटक, आईसीआईसीआई, केयरेज 2026 के अंत तक 92 से 95 देखती हैं। बेयर केस तेल फिर 110-120 पर 97 से 98 और उससे आगे की नई फिसलन, जहां 100 तक की चाल एक तेल रिस्क है जिसके लिए व्यापक रूप से मजबूत डॉलर भी जरूरी होगा। बुल केस एक पक्का संघर्ष विराम और एक यूएस व्यापार समझौता, निचले 90 के दायरे की ओर उबरना वह कॉन्ट्रेरियन राय जो कुछ संस्थाएं अब भी रखती हैं। आरबीआई की भूमिका किसी एक स्तर का बचाव करने के बजाय उतार चढ़ाव को सहलाना, इसलिए एक सुव्यवस्थित बहाव की उम्मीद करें, दीवार की नहीं। तेल से परे एक स्विंग कारक अपने अलग जिक्र का हकदार है, बार बार बनता बिगड़ता भारत यूएस व्यापार समझौता। फरवरी में दोनों पक्षों ने एक ढांचा तय किया जिसने भारतीय वस्तुओं पर वॉशिंगटन के दंडात्मक टैरिफ को 50% से 18% तक घटा दिया, जो निर्यातकों और रुपए के लिए एक स्पष्ट सकारात्मक बात है। पर वह व्यवस्था कुछ ही हफ्तों में संदेह में पड़ गई जब एक यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उन पारस्परिक टैरिफ का कानूनी आधार ही गिरा दिया, और तब से बातचीत कृषि, डेयरी और कृषिपूंज के जाने पहचाने अटकाव बिंदुओं पर रगड़ खाती रही है। जून के मध्य तक वार्ताकार कहते हैं कि समझौता लगभग पूरा है, सिवाय सबसे कठिन 1% के, और G7 के इतर एक मोदी ट्रंप बैठक अगली परीक्षा है, पर कुछ भी हस्ताक्षरित नहीं हुआ है। रुपए के लिए यह एक जीवंत, लगभग द्विआधारी जोखिम है। एक अंतिम रूप दिया गया समझौता टैरिफ के बोझ को हटा देगा और मुद्रा को निचले 90 के दायरे की ओर खींच सकता है, जबकि एक और टूट ठीक उसी समय ताज़ा दबाव बढ़ा देगी जब तेल का झटका फीका पड़ रहा हो। यह तेल के दाव के ऊपर बैठा एक बड़ा नीतिगत वाइल्ड कार्ड है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? एक दोतरफा बही खाता। एक कमजोर रुपया न तो वह आपदा है और न ही वह तुच्छ बात जैसा इसे अक्सर पेश किया जाता है। यह एक हस्तांतरण है और बही खाते के दोनों पहलू देखना मददगार होता है। लागत पक्ष पर यह भारत जो भी आयात करता है उसे महंगा बना देता है, मुद्रास्फीति को हवा देता है। एक मोटा नियम मानता है कि रुपए में 5% की गिरावट उपभोक्ता कीमतों में लगभग 35 BPS जोड़ती है, जो एक बड़ी वजह है कि RBI ने इस महीने अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को बढ़ाया और एक हॉकिश विराम की ओर खिसका, जहां इसकी अगली दर चाल अब नीचे के बजाय ऊपर जाने की अधिक संभावना है। यह चालू खाता और राजकोषीय घाटे को चौड़ा करता है जैसे जैसे तेल और सब्सिडी बिल चढ़ते हैं, और यह उन कंपनियों को निचोड़ता है जो डॉलर के गलत पक्ष पर हैं। तेल विपणक, एयरलाइंस, बजट कैरियर इंडिगो अपने डॉलर विमान पट्टों से जुड़ी विदेशी मुद्रा लागतों के चलते बड़े पैमाने पर एक पूर्ण वर्ष घाटे में बदल गई, और आयातित कच्चे माल पर निर्भर पेंट व उपभोक्ता कंपनियां, साथ ही वे कई भारतीय कंपनियां जो बिना हेज किया डॉलर कर्ज ढोती हैं। ऐतिहासिक रूप से कॉरपोरेट विदेशी उधारी का लगभग 60%। लाभ पक्ष पर वही कमजोर रुपया भारत के निर्यातकों के लिए एक अनुकूल हवा है। अवमूल्यन का हर 1% सेवा कंपनियों के परिचालन मार्जिन को अनुमानित कुछ 25% बढ़ाता है, और फार्मा, टेक्सटाइल व स्पेशलिटी केमिकल निर्यातक भी फायदे में रहते हैं। यह उन $135 बिलियन से अधिक के रुपए मूल्य को फुलाता है जो प्रवासी हर साल घर भेजते हैं, और नई कर छूट के कारण इसने भारतीय सरकारी बॉन्ड को, जो लगभग 7% यील्ड दे रहे हैं, विदेशी खरीदारों के लिए नए सिरे से आकर्षक बना दिया है। सोना हमेशा की तरह चुपचाप अपना काम करता है। रुपए में 10% की गिरावट मोटे तौर पर सोने की रुपया कीमत में 10% की वृद्धि है। निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? निवेशकों के लिए सबसे उपयोगी मानसिक बदलाव यह है कि हर नए निचले स्तर को एक बार की आपात स्थिति मानना बंद करें और एक धीरे धीरे कमजोर होते रुपए को परिदृश्य की एक अर्धस्थायी विशेषता मानना शुरू करें, ऐसी चीज जिसके इर्द गिर्द पोजिशन लेनी चाहिए, न कि उस पर घबराना चाहिए। व्यवहार में यह उन कारोबारों के पक्ष में झुकता है जो डॉलर में कमाते हैं बनाम उनके जो केवल उन्हें खर्च करते हैं। निर्यात मुखी IT, फार्मा और केमिकल नाम फायदे में रहते हैं, जहां आयात भारी घरेलू निर्माता और लीवरेज डॉलर उधारकर्ता पीड़ित होते हैं। यह किसी कंपनी की बिना हेज की गई विदेशी एक्सपोजर जांचने की एक वजह है, इससे पहले कि आप उसे एक मुद्रा फिसलन के दौरान रखें। एक वजह कि सोना और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भारतीय पोर्टफोलियो में एक रुपया हेज के रूप में जगह बनाए रखते हैं, और एक वजह कि नया कर मुक्त सरकारी बॉन्ड समझने लायक है। भले ही मुद्रा जोखिम का मतलब है कि यह कोई मुफ्त की चीज नहीं है। अनिवासी भारतीयों के लिए हिसाब दोनों ओर कटता है। एक कमजोर रुपया घर भेजे गए हर डॉलर को और आगे तक खींचता है, पर यह उनके पास पहले से मौजूद रुपया परिसंपत्तियों के डॉलर मूल्य को चुपचाप घिसता है। इसमें से कुछ भी कोई सिफारिश नहीं है, यह बस वह जमीन है जो मुद्रा ने बिछा दी है। निष्कर्ष: मई में रुपए का रिकॉर्ड निचला स्तर एक तेल की सुर्खी था। इसकी असली कहानी एक संरचनात्मक प्रबंधित गिरावट है जिसे युद्ध ने महज तेज कर दिया। यह कहां रुकता है? यह सबसे बढ़कर कच्चे तेल की कीमत पर एक दाव है और बेस केस मध्य 90 के दायरे में एक क्रमिक बहाव है, कोई पतन नहीं, जहां RBI ने चुपचाप तय कर लिया है कि इसे एक सुव्यवस्थित ढंग से होने दिया जाए। भारत के लिए यह न आपदा है न मुनाफा बल्कि एक पुनर्संतुलन। यह आयातकों और उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति के जरिए कर लगाता है जबकि निर्यातकों और प्रवासियों को सब्सिडी देता है। मुद्रा हर बार एक नया निचला स्तर छापने पर सुर्खियां बटोरती रहेगी। निवेशक का काम अधिक शांत है, यह समझना कि कमजोरी का हर रुपया उस बही खाते के किस पक्ष पर गिरता है और उस पक्ष को रखना जो फायदे में रहता है। यह निवेश सलाह, मुद्रा ट्रेडिंग सलाह या किसी प्रतिभूति या मुद्रा को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। पूर्वानुमान और विश्लेषकों के विचार संदर्भ के लिए बताए गए हैं और तेल की कीमतों व वैश्विक घटनाओं के साथ तेजी से बदल सकते हैं। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया एक पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।